ताज़ा स्थिति पर एक विशेष कार्यक्रम के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शरद कोहली जी हैं, उमेश चतुर्वेदी जी हैं, एक्सपर्ट्स जो हमें जो ताज़ा स्थिति उत्पन्न हुई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उस पर हमें एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। सो पहले हम बता दें कि भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने नई दिल्ली में इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन महानिदेशक ने आज दोपहर युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी है। किसी अन्य मुद्दे पर, किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। सुनते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी ब्रीफिंग में क्या कहा।
Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours.
और इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, चर्चा शुरू करें, बता दें कि विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम शंकर ने आज कहा कि भारत और पाकिस्तान गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत का यही रुख जारी रहेगा। शरद जी, क्या कहेंगे आप, ये जो अनाउंसमेंट आज हुई है, उसका त्वरित क्या हम तात्पर्य निकालें? क्या अब जो युद्ध था दोनों उनकी तरफ से युद्ध और हमारी जो जवाबी कार्रवाई थी, क्या अब उस पर वो बिल्कुल रोक दी जाएगी और इसका क्या इम्प्लीकेशन है पूरे हमारे देश के लिए?
देखिए, सीज फायर का तथ्य रूप से हम समझे तो सीज फायर का यही अर्थ होता है कि दोनों तरफ से जो मिलिट्री कार्रवाई चल रही थी वो तुरंत रोक दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि लड़ाई कभी भी किसी के लिए हितकारक नहीं होती है और हमारा जो रुख है आतंकवाद के खिलाफ वो हमारा रुख में कोई बदलाव नहीं है।
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू दिस प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड रिलेटेड डेवलपमेंट्स। वी हैव विद अस कॉमोडोर रवि नायर, कर्नल सोफिया कुरेशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair.
Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi.
Namaskar. Ab main aapko Pakistan ki misinformation campaign ke bare mein avgat karaungi. Pehla, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और ब्यास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकूबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।
So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Bias are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian Armed Forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, two military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. Sir.
In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen.
Thank you. With that, we come to the closure of this presentation.
Thank you very much.
सो अभी हमने प्रेस ब्रीफिंग में सुना कि जो भारत ने कैसे जो ये 22 अप्रैल को जो टेरर हमला हुआ उसके बाद जो गतिविधियां हुई और उसमें क्या क्या क्षति पहुंची पाकिस्तान को और किन शर्तों पर भारत ने इस युद्ध विराम के लिए हामी भरी है. क्या लगता है आपको शरद जी, जो टेररिज्म है उसके खिलाफ जो उन्होंने कहा है कि उसके खिलाफ हमारा जो एक स्टैंड है वो हमेशा एक अडिग रहेगा, वो कितना इम्पोर्टेंट है?
बहुत इम्पोर्टेंट है सोनू, क्योंकि जहाँ तक टेररिज्म की बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारत का जीरो टॉलरेंस है, और अगर कोई भी भारत की संप्रभुता सॉवरेनिटी पर अगर बात आती है, भारत के निर्दोष लोगों को जिस प्रकार से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ ऐसी कोई बात आती है, तो भारत हमेशा तैयार रहेगा, भारत के आर्म फोर्सेस तैयार रहेंगे. जहां तक युद्ध रुकने की बात है, मैं समझता हूं युद्ध कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, ये तो हम सब जानते हैं. अर्थव्यवस्था, भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो कि बहुत प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है, इस समय दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो चुकी है. 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स हम जापान को पीछे छोड़ के आगे जा चुके हैं, और भारत की इस समय भारत में जिस प्रकार से निवेश आ रहा है, एफडीआई की बात करें, एफपीआई की बात करें, तो मैं समझता हूं युद्ध तो एक इंस्टेबिलिटी पैदा करता है. हालांकि भारत जैसे मैं हर बार साथ में जोड़ना चाहूंगा कि भारत को पूरा अधिकार है, ये सब चीजें बाद में आती हैं, पहले हमें अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करने का राइट है, हमको उसको उसकी सुरक्षा देने का राइट है. पर अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो भारत को जो नुकसान, जब दो देश लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान दोनों देशों को होता है. ये सच है कि पाकिस्तानी एसेट्स को, अभी जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे, उनके ग्राउंड एसेट्स को, एयर एसेट्स को नुकसान हुआ, भारत में उतना नुकसान नहीं हुआ, पर अगर लड़ाई लंबी चलती है तो उसकी कीमत कुछ ना कुछ तो हमको देनी पड़ती है. और हम ये भी ना भूलें कि लड़ाई पैसों से लड़ी जाती है, आगे तो आपके हथियार होते हैं, आर्म्स एमिनेशन होते हैं, हमारे वीर जवान होते हैं, वीर सोल्जर्स होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी होता है, पर उसके पीछे एक आर्थिक युद्ध भी होता है जो आपको अपने जेब से लड़ना पड़ता है. तो मैं समझता हूं जितना लंबा युद्ध चलता है तो हमारे देश की जो आर्थिक कोश है, जिसको मैं बात करूं, तो वो धीरे 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 उस पर असर होता है. जीडीपी को इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन पर असर होता है, सामान की शॉर्टेज हो जाती है, जैसे मैंने कहा विदेशी निवेश आना कम हो जाता है. तो इसलिए युद्ध विराम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खबर है अगर पाकिस्तान इसका पालन करता है. और हम तो यही उम्मीद करते हैं सोनू कि ये जो युद्ध विराम हुआ है ये सस्टेनेबल रहे, और सबसे जरूरी बात यह है कि आगे कोई इस प्रकार की घटना आगे से नहीं होनी चाहिए. क्योंकि अगर वो होती है, जैसा अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, तो भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हम बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. पर फिलहाल के लिए
आपने यूज किया जीरो टॉलरिज्म फॉर टेररिज्म. उमेश जी, आप क्या कहेंगे, ये कूटनीतिक जीत है भारत की, भारत के पराक्रम की जीत है, और एक बहुत ही अडिग जो उन्होंने एक अपना दृढ़ वो बताया है स्टैंड कि टेररिज्म जो है वो किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं होगा. आपको लगता है कि शायद अब हम इस जो समस्या है उससे थोड़ा सा हम आशा कर सकते हैं कि निजात मिलेगी?
देखिए, पाकिस्तान पर तो भरोसा जल्दी किया नहीं जा सकता. अगर भरोसा होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती. पहलगाम में उसने जो किया, उसके पीछे उसके ही लोग थे, उसका हाथ था, उसकी सेना का हाथ था, उसी के रिटेलिएशन में जवाब में ये सब एक्शन हुआ. लेकिन एक चीज है कि सही मायने में देखा जाए तो भारतीय सेनाओं ने कार्रवाई अब जाकर के शुरू की थी, और ये पहले ही स्टेप की कार्रवाई के बाद आप देखिए कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा, और यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत कही जाएगी. हालांकि भारत ने एक चीज साफ किया है, जैसा कि विदेश सचिव ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा और बाद में विदेश मंत्री की जो ट्वीट आया है उसमें यह कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर इस संघर्ष विराम को स्वीकार किया है और किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा और किसी तीसरे देश पर तीसरी जगह पर बातचीत भी नहीं होगी। तो जाहिर है कि भारत अपनी शर्तों पर है और ये इसलिए हुआ है कि जैसा कि अभी बोल रहे थे हमारे साथी पैनलिस्ट की भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है, दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आप समझ लीजिए, हम लोग सुबह भी जब चर्चा कर रहे थे तो पाकिस्तान के पास सिर्फ $15 बिलियन का ही फॉरेन रिजर्व बचा है और उसका जबकि सालाना देनदारी ही बनती है $22 बिलियन की और वो IMF के दरवाजे पर पहुंच गया था। तो देखिए कि IMF ने उसको सहायता की है, क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के मद में उसको कर्ज दिया है $1.4 बिलियन का और उसमें से $1 बिलियन रिलीज भी कर दिया। तो जाहिर है, बिल्कुल सही कह रहे थे कि असली लड़ाई जो होती है वो आर्थिक होती है, बेशक सेनाएं लड़ती हैं, गोला बारूद लगता है लेकिन वो होता है। तो ये भारत की एक बड़ी जीत है और पाकिस्तान को सोचना होगा, हालांकि पाकिस्तान समझ पाएगा कितना ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी वो समझता हुआ नजर आ रहा है इसीलिए वो सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। और भारत के DGMO को उसके DGMO ने फोन किया, 3:55 पर फोन किया और 5 बजे से लगभग सहमति बन चुकी है तो मुझे लगता है। लेकिन पाकिस्तान से फिर भी अलर्ट रहना पड़ेगा, इसलिए हमने देखा पिछली अभी जस्ट जो प्रेस ब्रीफिंग खत्म हुई जी है उसमें हमारे दोनों सेना अफसर हैं महिलाएं, उन्होंने ये कहा कि भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेनाएं हर पल तैयार है। वह एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी है कि भैया आप अपनी सीमा में रहो अन्यथा हम एक्शन के लिए अभी भी तैयार हैं।
और अब एक और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉमोडोर श्रीकांत केसनोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में कॉमोडोर। हेलो,
धन्यवाद मैडम
जी। जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज बहुत ही एक अहम फैसला हुआ है आज शाम, क्या लगता है आपको, किस तरह का संदेश जा रहा है सभी को भारत की तरफ से? भारत ने जिस तरह से जितनी हमारे आर्म फोर्सेस ने जिस कहें कि सुदृढ़ता से, सटीकता से और संवेदनशीलता से, सतर्कता से पूरा जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया और जिस तरह से अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि टेररिज्म पे वो बिल्कुल उसके एंटी टेररिज्म स्टैंड पे अडिग है, क्या संदेश जा रहा है?
बिल्कुल जैसे आपने कहा है सही संदेश जा रहा है। मैं इसको 3-4 चीजों में अनपैक करना चाहूंगा। पहले जो हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल, ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल में भारत ने एक जैसे सिग्नल दिया है मानो कि एक हम एक नया नॉर्मल एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ टेरर अटैक हुआ तो हम इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, एक मिलिट्री एक्शन लेंगे, काइनेटिक एक्शन लेंगे। सो एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है। एट द सेम टाइम हम ये भी बोल रहे हैं कि हम एसेंशियली पीस, अमन चाहते हैं, तो नॉन एस्केलेटरी जो था हमारा शुरू से ये रहा है कि ये नॉन एस्केलेटरी है, ये प्यूनिटिव स्ट्राइक है और अगर पाकिस्तान नहीं एस्केलेट करेगी तो हम भी उसको ज्यादा नहीं लेना चाहते। तो ये हुआ स्ट्रेटजिक लेवल पे। ऑपरेशनल लेवल में हमने ये दिखाया एकदम जिस तरह से फुर्ती से, जिस तरह से तेजी से हमने ऑपरेशंस किया आर्मी एयरफोर्स के ऑपरेशंस पर्टिकुलरली, तो उससे हमने ये जताया कि इंडियन मिलिट्री ये एक पनिशमेंट दे सकता है पाकिस्तान को जिससे हम थोड़ा बहुत उनको डिसवेड करें, डिटर करें आइंदा ऐसे ना। और टैक्टिकल लेवल में मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारे मिलिट्री प्रोफेशनल्स ने एकदम एक तरह से डिस्प्ले दिया, जैसे हम लोग ज्यादा नहीं बात करते लेकिन इस बार एयर डिफेंस जो हमने दिखाया या हमारे बड़े जो मिसाइल्स और स्टैंड ऑफ वेपन्स और ड्रोन्स जिस तरह से हमने अटैक किया और डिफेंड किया, ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। तो मैं समझता हूँ इन 4-5 दिनों में हमने जो ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने थे तकरीबन हमने किया है, और जैसे पाकिस्तान का फोन कॉल आया कि हम ज्यादा नहीं करना चाहेंगे तो हम फिर वी एक्सेप्टेड दैट पार्ट एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ एक अच्छा आउटकम है
जी, हमने प्रिसीजन के साथ किया और हमने ये भी ध्यान रखा कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, जो नॉन टेररिस्ट वो है वहां पे एरियाज में कम से कम वो हो। हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की, हमने अपनी तरफ से कोई एस्केलेशन नहीं की, लेकिन हमने एक कहें कि एक बहुत ही स्ट्रांग जवाब भी दिया है और अपना प्रदर्शन भी किया है हमारे जो सैन्य बल है, जो हमारे पूरे सशस्त्र बल है उनका।
वो बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रही है। हमने पहले दिन से ही, इनफैक्ट जो हमारा फर्स्ट स्ट्राइक था 9 जगहों पे, वो इतना प्रिसाइज था, एकदम एकदम नाजुक लेकिन प्रिसाइज था कि वी हिट ओनली जो बोलते हैं टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जब उनका एस्केलेशन हुआ तब भी हमने सिर्फ उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे मारा, तो मैं समझता हूँ मिनिमल कोलैटरल डैमेज था। और ये इंडिया का हमेशा प्रिंसिपल रहा है टू मिनिमाइज कोलैटरल डैमेज। तो एक तरह से हमने हमारा प्रिसिशन भी दिखाया और स्किल भी दिखाया, और मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म जो है वो तो इंडिया आई थिंक बहुत अच्छा है, और आगे लोग इसको नोटिस करेंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक तरह का मैसेज मिल गया है, और इससे आगे वो क्या करेंगे हमको देखना पड़ेगा, पर हमने जरूर ये मैसेज भेजा है कि अगर आप कुछ ऐसा करोगे, अगर आप जो बोलते हैं पंगा लोगे, तो फिर हम उसका जवाब देंगे।
शरद जी, एक जो बात कही अभी प्रेस ब्रीफिंग में वो थी मिस इन्फॉर्मेशन, और इस पूरे वॉर में कहें कि पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसमें मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसने एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले किया। सो जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो हर एक नागरिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेक न्यूज के बहकावे में ना आए और मिस इन्फॉर्मेशन से बचे।
जी हाँ बिल्कुल, और हालांकि अब क्योंकि युद्ध विराम एक प्रकार की घोषणा हो गई है तो मैं बहुत ज्यादा आलोचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमारी जो प्रिसिशन थी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस की जो प्रिसिशन थी वो इतनी सटीक थी, और जैसा कि अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि हमने कोलेट्रल डैमेज को बिल्कुल मिनिमल ना के बराबर रखा, जहां हम हमला करना चाहते थे, जहां पर हम उनको लेसन सिखाना चाहते थे, हमने ठीक वहीं जाके किया जिससे सिविलियंस का नुकसान। आपको पता होगा बीच में जब लाहौर कराची के बीच में फ्लाइट्स चल रही थी, सिविल फ्लाइट्स चल रही थी, तो भारतीय वायुसेना ने और भारतीय आर्म फोर्सेस ने ध्यान रखा कि हम उसमें किसी को डैमेज ना हो जाए। तो हमने इस चीज, तो हो क्या रहा था कि भारत की तरफ से जो अटैक हो रहे थे वो जैसा कि हम प्रेस ब्रीफिंग में रोज सुन रहे थे वो बहुत सटीक थे, पर उधर से जो भी कार्रवाई करी जा रही थी वो ज्यादातर वो डिसार्म की जा रही थी, उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा था। तो अब उनको, अपनी जनता को, अपने लोगों को ये बताना था कि भाई देखो हम भी पलट के जवाब दे रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो हम भी जवाब दे रहे हैं। तो वो उन्होंने फिर डिसइंफॉर्मेशन का सहारा लिया कि ये बताने के लिए। अब लोग तो आजकल क्या है कि सोशल मीडिया को ज्यादा ऑथेंटिक मान जाते हैं, जो लोग अपने मोबाइल पर देखते हैं खोलकर उनको लगता है ज्यादा ऑथेंटिक है, तो वो इसलिए वो प्रोपेगेंडा बनाया गया। पर लोगों को बहुत अच्छी बात ये रही कि हमारी सरकार की तरफ से ये जो डेली प्रेस ब्रीफिंग्स आ रही थी, इससे लोगों को ये स्पष्ट हो गया कि क्या सच है क्या झूठ है, और स्पष्ट तौर पर बताया गया कि अगर आपको ये खबर मिली है तो ये झूठ है, सही खबर ये है। तो मुझे लग रहा है सही सोर्स से अगर खबर आती है तो डिसइंफॉर्मेशन को कैंसिल करते हैं। मुझे लगता है इस सारे मामले में ये भी लोगों को समझ में आया कि आगे से आपको अगर कोई इस प्रकार का प्रोपेगेंडा नैरेटिव आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है तो आप उस पर सीधा सीधा यकीन ना करें, आप केवल ऑथेंटिक सोर्सेस से ही अपने आप को इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फीड करें।
कॉमोडोर केसनूर, टॉकिंग अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, यू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वॉज ब्रॉट अप बाय कर्नल कुरेशी वाइल शी वॉज यू नो टेकिंग पार्ट इन द प्रेस ब्रीफिंग शॉर्ट वाइल अगो। शी सेड दैट वन ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन विच वॉज स्प्रेड बाय पाकिस्तान वॉज दैट वी हैव अटैक्ड रिलीजियस प्लेसेज एंड विच वॉज नॉट एट ऑल ट्रू, एंड द आर आर्मी इज सेक्युलर एंड इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज of the country and holds every place of worship in respect. How important is this?
It is very, very important. As you brought out, we are secular nation. The armed forces abide by that principle. We have something loosely called as a MMG, yeah, Mandir Masjid Gurudwara sort of thing, where every army unit or cantonment has that. The Navy and Air Force follow similar forms of plurality or heterogeneity in our lives and modes of living and worship. So there is no way the Indian Armed Forces would ever do something like this. There is no way the government of India would ever think of doing something like this. So for the Pakistan government or whoever did that to suggest this is not just mischievous, it is vile. But as you brought out, it is important for Indians not to fall for that sort of propaganda. Pakistan will naturally attempt to create artificial fault lines in a heterogeneous, and they will try to feed on that. So it is important in war, as you brought out, the previous distinguished speaker brought out, for the people of our country to go through reliable sources, not to believe in rumors or propaganda, not to fall for the first thing that they see or receive or hear on social and digital media. I think this is now the duty of every citizen, that the very least they can do is not to be swayed by propaganda from inimical forces.
उमेश जी, आपको क्या लगता है, हम क्या आशा कर सकते हैं कि पूरा विश्व जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आतंकवाद का शिकार हुआ है, पूरा विश्व इकट्ठे होकर आतंकवाद का सामना करेगा? शायद हम क्या एक ऐसी उम्मीद रखें कि पाकिस्तान भी उसमें जुड़ेगा और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की कुछ मुहिम हो सकती है?
देखिए, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसमें तो उम्मीद पर ही सब कुछ टिका हुआ है, तो ऐसी उम्मीद तो करनी ही चाहिए जिसमें अच्छाई हो, जिसमें कुछ सकारात्मक संदेश हो। लेकिन पाकिस्तान को आप जिस तरह से देखते रहे हैं, खासतौर पर जब से आज़ाद हुआ है तभी से देख रहे हैं, पाकिस्तान पर भरोसा करना आसान नहीं है। तो इसलिए हम फिर से वो जो हमारी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी लाइन जो रही है दोनों महिला अफसरों की, उन्होंने जो कहा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सेना तैयार है, तो कहीं ना कहीं वो एक संदेश है और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान के प्रति जो अविश्वास है वो भी है कि तुमने जो कहा हमने मान लिया, अभी हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन ये मत सोचना कि फिर तुम करोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि उम्मीद तो करनी चाहिए लेकिन अलर्ट भी रहना चाहिए, और शांति भी तभी आती है जब सेना मजबूत होती है। शांति के लिए मजबूत सेना और ताकत होना, आर्थिक ताकत, सैनिक ताकत होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और भारतीय जो राजनय है या जो भारतीय नेतृत्व है, जो भारतीय सेना है, कम से कम इस मौके पर यही संदेश देने की कोशिश कर रही है अपनी जनता को भी और पाकिस्तान को भी।
और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सतर्कता बहुत जरूरी है अभी के समय में,
बिल्कुल।
और आप एक क्लोजिंग अगर आप कुछ थोड़ा सा कहना चाहें कि ये रिलीफ है एक कॉमन मैन के लिए भी जो बॉर्डर के पास रहते हैं, या पूरे पूरे देश में एक जो जब भी ऐसा कुछ होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो जो जिस तरह का एक नर्वसनेस, एक कहें कि एक जोश भी होता है लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी होता है, तो एक रिलीफ है।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सोनू, आई मीन पीपल वर लिविंग इन ब्लैकआउट्स, राजस्थान, पंजाब, J&K जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उसमें आपने देखा कि लोग रात को ब्लैकआउट हो रहा था, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे, लोगों का ट्रैवल रुका हुआ था। देखिए, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, सो आई फील दिस इज अ बिग रिलीफ एंड गुड फॉर एवरीबडी। बट देन एट द सेम टाइम एज उमेश राइटली सेड, यू नो, पाकिस्तान वी नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज द पाकिस्तान इज अ वेरी डाइवर्सली पावर सेंट्रिक नेशन, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ pillars in Pakistan, so we need to be careful about what happens in future, and I think the armed forces remain committed to taking action at any time when required.
So Navy ke purv adhikari Commodore Shrikant Kesnur hamare saath jude the, unka bahut bahut dhanyawad, aur aapka Sharad Kohli ji, Umesh Chaturvedi ji, senior journalist hamare saath jude aur unhone hame itni sateek jankari di, bahut bahut dhanyawad
ji, namaskar.